तफसीर देखेंगे आयत नंबर 51 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नमा काना कौलुल मुमिनीन इज़ा दुउ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अतअना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ईमानदारों की बात तो सिर्फ इतनी है कि जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला फरमा दे इनके दरमियान, तो वो कहते हैं कि हमने फैसला सुन लिया और हमने इताअत की, और यही लोग दोनों जहानों में बामुराद हैं। इसके लिए शर्त क्या है? वमन युतिअल्लाह व रसूलहू व यख्शल्लाह व यत्तकिह, और चाहिए कि वो अल्लाह से और रसूल की इताअत करे और अल्लाह से डरता रहे और बचता रहे उसकी नाफरमानी से। फ़ौलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, तो यही लोग कामयाब हैं। पिछली आयतों के साथ सबक का तसलसल है। हमने इसे पिछली आयत में देखा कि मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क क्या होता है, कि जब किसी को अल्लाह के हुक्म सुनाए जाएं या उसको अल्लाह की मर्ज़ी मालूम हो जाए तो उसके बाद इधर उधर की बात करे, उस बात को इस तरह से ले कि शायद ये बात सिर्फ़ एक मशवरा है, हुक्म की बजाय मशवरा समझने लगे दीन को, कुछ ख़ास रिचुअल्स का नाम दीन बनाकर बस उसी पे अमल करने पे इक्तफा कर ले, और तीन बीमारियों की वजह से उस अमल से रुक जाए। पीछे भी हमने लफ्ज़ देखा था दुउ इलल्लाह, यहाँ फिर लफ्ज़ दावत का आ रहा है। ये दावत कोई घरों में जाकर देने की नहीं होती, हर बंदे को अल्लाह ताला ने फितरत की पुकार के तौर पर अल्लाह की दावत, अल्लाह की मर्ज़ी, वो क्या चाहता है, ये सब कुछ बता दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जब ये चीज़ें नहीं मानना चाहते तो वो उसका कोई ना कोई नाम लेकर, कोई उज़र देकर इस तरह से बातें करके चल पड़ते हैं कि शायद ये बात हमारे लिए नहीं। लेकिन अब इसके बरक्स जो सच्चे मोमिन होते हैं उनका हाल क्या होता है, कि जब कभी उनको अल्लाह और रसूल की तरफ बुलाया जाए, इन्नमा कलमा हसर है यानी ओनली दिस, यानी बस यही लोग हैं मोमिन, क्या पता चलता है कि अगर किसी को मोमिन समझना है तो फिर उसके लिए यही लोग आपके सामने आने चाहिए। हीलो हुज्जत नहीं करते, फौरन मान जाते, अई यकूलू समेना वाताना, सुना और बस अब मानेंगे। हम अगर अपने हाल पे गौर करें तो हमें कौन अच्छा लगता है, कैसे बच्चे अच्छे लगते हैं माँ बाप को, कि माँ बाप कुछ कहें ठीक है कर लेंगे, मंजूर है यही करेंगे। इसी तरह उस्तादों को शागिर्द कौन अच्छे लगते हैं, औरों को तो छोड़ें, बीवियों को शौहर भी वही अच्छे लगते हैं जो समेना वाताना के। तो अल्लाह और उसका रसूल जो सबसे ज़्यादा इसका हक रखता है, उसके मुकाबले में भी किसी किस्म की कोई हिलो हुज्जत करना, तावीलात के दरवाज़े खोलना, शक व शुबे पैदा करना, लोगों को डाउटफुल करना, ये सारी चीज़ों की बजाय समेना व अताना, हमने सुना और मान लिया। सच्चे मोमिन का यही हाल होता है, बात सुन के तावीलात नहीं करने लग जाता, तोलने ही नहीं लगता, वज़न नहीं करता नेकियों का बदियों का, करूं कि नहीं, नफ़ा नुकसान नहीं तोलता, बल्कि फ़ौरन मान जाता है कि अच्छा बस अब कोई और चॉइस ही नहीं। देखिए, मैंने देखा है जिस तरह से लोग समा अतात गैर मुस्लिम मुल्कों में आके कवानीन की करते हैं, अगर इतनी ही सिर्फ अगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की कर रहे होते तो मुसलमान कब के गालिब आ चुके होते। आपकी गाड़ी का टिकट मिल गया, कोई जूझ रहा नहीं, चुप करके जाओ पे कर दो, हिलो हुज्जत नहीं कर सकते। आपने ये नहीं पे किया, इस पे इतना एक्स्ट्रा लग गया, चुप करके पे कराते हैं। यानी हर जगह 19-20, सिर्फ आप कार पार करने में देखें कि अगर दो गाड़ियों के बीच जो लाइन होती है उसके ऊपर अगर आपका पाँव आ गया और वो आपको टिकट दे दें कि आपने सही पार्क नहीं किया, कोई हिलता भी नहीं है। जब इतनी अतात कानून की, जब इतनी अतात रिवाज की, रस्मों की, कभी एसोसिएट करने के नाम पर, असिमिलेट करने के नाम पर उनको हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, कभी कुछ हेलोविन की मुबारकबादें दे रहे हैं, तो ये खामोश किस्म की इताअत ही तो है। लेकिन जब बात है अल्लाह की और उसके रसूल की तो तावीलात, जिसको कहते हैं ना फिक्र ही पड़ जाए, गम ही पड़ जाता है कि बस अब ये बात माननी पड़ेगी। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सच्चे मोमिनों का हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो होंठों का हिलना देख रहे होते हैं कि कब कोई बात ऐसी हमारे कानों में पहुँचे जो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई थी तो हम फौरन उसको मान लेंगे। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो फलाह पाने वाले हैं, और फलाह कामयाबी मुकम्मल कामयाबी उसी को मिलेगी जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। देख रहे हैं आप, फिर इताअत की बात आ गई कि कैसे बातों को सुनने के बाद अब उसको मानना, उसके ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अरबी डिक्शनरी में मुफ्लहून या फलाह का लफ्ज़ किसके लिए आता है? हसूलिल मतलूब, यानी जो चीज़ मतलूब है उसको हासिल भी कर लिया आपने। व दफ़इल मकरूह, और मकरूह को छोड़ देना। क्या मतलब है मुफ्लह कौन होते हैं? कि वो इताअत करते हैं और नाफरमानी छोड़ते हैं। बहुत फ़र्क है दोनों में। सिर्फ इताअत करने से नहीं आप बचेंगे जब तक कि नाफरमानी नहीं छोड़ेंगे। आप इसको एक डॉक्टर की दवा से मिसाल समझ लें कि कोई दवा खाता रहे बद परहेजी ना छोड़े तो फ़ायदा देगी वो दवा, असर ही ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हम कितनी नेकियां क्यों ना करें लेकिन कुछ गुनाह नहीं छोड़ेंगे तो नेकियां नहीं होंगी पूरी, फ़ायदा नहीं होगा, डिलीट हो जाती हैं नेकियां इंसान की उस चीज़ के साथ। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बता देते हैं कि देखो तुमने चूँकि दिल में शक नहीं रखे, तुम्हारे दिल बीमारे नहीं थे, तुम्हारी नीयतें खोटी नहीं थी, तुम अल्लाह के हुक्मों को अल्लाह की शरीयत को अपने ऊपर एक जुल्म और एक तावान नहीं समझते थे, हमने भी तुमको कामयाबियां दी, हम तुमसे राजी हो गए। और आप देखिए कि कामयाबी क्या है, सूरत आल इमरान में हम पढ़ चुके, मन ज़ुख़्ज़िहानिन नारि व उद्खिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और जो कि जहन्नुम की आग से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया यही है कामयाबी। तो याद रखिए हमारा मतलूब सिर्फ जन्नत पाना नहीं है, जहन्नुम से खुलासी भी है। जहन्नुम से बचा के जन्नत में जाएंगे तो कामयाब है, वरना अगर जहन्नुम में जल भुन के कई साल की हम सजा भुगतने के बाद अल्लाह के आज़ाद करदा जहन्नमियों के नाम पे जन्नत में गए तो क्या फ़ायदा हुआ, उससे क्या मज़ा आएगा। किसी चीज़ को आप पाते हैं ना तो अगर पाने के बीच में इतनी रुकावटें इतनी बदमजगी और इतनी एफर्ट हो तो आप कहते हैं मज़ा नहीं आया, रुल गए हैं फिर चीज़ मिली है। आज दुनिया की चीज़ों को पाने में भी अक्सर इंसान रुलते हैं फिर मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए बहुत कम लोग इस बात पे गौर कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी खूबसूरत दावत दी। अब इसके मज़ीद दर्जे बताए गए, क्या करो फला पानी है, समय ना व अताना के दर्जे लिख लें आप अगली आयत का टॉपिक। सुन के मानना क्या मतलब है, उसके कुछ मुख्तलिफ एंगल्स होते हैं। कैसे? वमई युति अल्लाह व रसूलहू, और जो इताअत करता है अल्लाह और उसके रसूल की। इताअत का लफ्ज़ है ना ये तौअन से है, तोए व आइन इसका रूट होता है, तौअन कहते हैं खुशी को, करहन इसका अपोजिट है। आएगा आगे कुरान पाक में, खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, ठीक है, तो करना तो है, रो रो के भी करना है तो हंस हंस के कर लो। रोते रोते क्यों अपने आप को छुपा रहे हो, हंसते हंसते छुपाओ। रोते मुंह की नमाजें जो पढ़ रहे होते हंसते मुंह से पढ़ लो, यानी खुशी बना ले उस बात को। आप कह लें कि अल्लाह और रसूल की इताअत क्या है, कि अल्लाह और रसूल की पसंद को अपनी पसंद बना लो, खुशी खुशी नेकियां करो, नेकियां करने के बाद भी खुश दिखो, तुम्हारे चेहरे पर रंग दिखे कि तुम वाकई खुश इंसान हो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या दिया है, तो फिर तुम क्या करोगे। वमई युति अल्लाह व रसूलहू, रसूल की इताअत, अल्लाह की इताअत, और अल्लाह के साथ रसूल की इताअत ऐसे ही है सिर्फ बात समझने के लिए, जैसे कोई किसी गवर्नमेंट की इताअत कैसे करता है जब उसकी तरफ से भेजे हुए किसी अफसर की बात मानता है। आज बहुत सारे लोगों ने रसूल की इताअत को अलग कर दिया। आगे आप पढ़ते जाएंगे आज तुम्हें बार बार आएगा, तो यही समझ लें कि रसूल की इताअत को हम सिर्फ आज नमाज रोजे तक रखते हैं। इतनी सुन्नतें, नबी ने हाथ कहाँ बांधे, नबी ने रफुल यदैन किया कि नहीं, किधर किया, नमाज रोज़े रिचुअल तक तो हम आज इताते रसूल की बात करते हुए दिखते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में हम इताते रसूल की ज़रूरत तक महसूस नहीं करते। शादी ब्याह में तो ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही, मरने जीने पे तो कहते हैं ज़रूरत ही कुछ नहीं, हत्ता के नबी के पैदा होने की खुशी मनाने में भी हम नहीं देखते कि अल्लाह के नबी किस में है, खुश किस में होंगे, वो इस बात में खुश होंगे या उस बात में खुश होंगे। बात मानो, अगर तुम रसूल का एहतराम करते हो शौक से करो, ताजीम करते हो शौक से करो, लेकिन करते करते इतना न थक जाओ कि इताअत के वक्त में थक के बैठ जाओ। असल बात इतात है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। इतात करो आप अपनी उस माँ को जिसकी बात न माने सुने, ना उसकी तरफ देखे, ना उसका कुछ ख्याल ना करें, और जूँ ही उसकी सालगिरह आए आप उससे दूर दूसरे मुल्क बैठे एक पार्टी, दावत, केक, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ सब लगा ले, माँ को खुशी होगी? वो कहेगी मेरे से तो बात नहीं करती, मुझे तो ऐसे बोलती हो जैसे बादल गरजते हैं, मैं क्या करूं तुम्हारी इस चीज़ को। तो याद रखिए कोई शॉर्टकट नहीं है अल्लाह के रसूल को खुश करने का। एहतराम, ताज़ीम, फिर इताअत, इताअत तक रुकेंगे फिर बात बनेगी। हसूले मतलूब के लिए इताअत लाजिम है। कुछ बच्चे होते हैं ना शरायत मनाते हैं, कुछ काम करवाना है तो पहले ये करो वो करो। दुनिया में तुम्हें सारी बातें समझ आती हैं लेकिन नबी की बात को मानने से पीछे हट जाते हैं। अब देखिए आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, इमेजिन करें यहाँ जो कामयाबी दिखाई जा रही है ना फला, ये ऊपर चढ़ना है। आप सीढ़ी पे जाते जाते ज़रा सा डंडे से पाँव अलग जगह रखें, कहाँ गिरेंगे? इतनी ज़ोर से नीचे गिरेंगे कि आपका हो सकता है कि जिस्म का कोई हिस्सा भी सलामत ना रहे। सीढ़ी की मतलूब जगह पर कदम रखेंगे तो फलाह है, कामयाबी है, बुलंदी है, ऊपर जाएंगे, और पाँव ज़रा सा इधर से उधर गया तो मुंह के एक बल गिरेंगे। ये है इताते रसूल, जो अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कह दिया, उसकी इत्तबा करो, उसकी इताअत करो, इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी। स्वीट डिश बनानी है तो स्वीट डालनी पड़ेगी, नमक मिर्च नहीं डाल सकते, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, होती बड़ी मुश्किल है इताअत। बंदे के नफ्स में सरकशी है, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। सरकश घोड़ा ये नफ्स, ना ये अल्लाह रसूल की इताअत करने देता है, ना बड़ों की, ना लीडर्स की, ना हुक्मरानों की। इसके लिए फिर अपने ऊपर लगामे डालने का नाम है अतीउल्लाह। फिर पता चलेगा कि किस तरह से ये काम करता था। फिर उसके बाद वह यख्शल्लाह, अब अल्लाह से डरे भी। ये क्या बात हुई, इतात की अब अल्लाह से डरना भी है? नहीं बल्कि कुछ और भी है, और वो क्या? वह यत्तकी, और उसकी नाफरमानी से बचे। फौलाइका हुमुल फाइजून, ये हैं कामयाब। अब इसमें आप देखिए कि फलाह के लिए चार लफ्ज़ आए हैं ना, अतीउल्लाह, अतीउ रसूल, यख्शल्लाह व यत्तकी। इनका फ़र्क समझने के लिए एक वाक्य आपके सामने रखती हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह बयान किया, कहते हैं कि एक रोज़ मस्जिद नबी में खड़े थे, ये एक रूमी किसान आया, यानी जो गांव में रहते हैं ना किसान फार्मर, एक शख्स बिल्कुल आपके बराबर आकर खड़ा हुआ और कहने लगा, अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कलमा पढ़ा। हज़रत उमर ने उससे पूछा क्या बात है, यानी क्या कह रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अल्लाह के लिए मुसलमान हो गया हूँ। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि इसका कोई सबब है? कहा हाँ, क्या सबब है तुम्हारे मुसलमान होने का? कहने लगा बात यह है कि मैंने तौरात, इंजील, जबूर और पिछले अंबिया कराम की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हाल ही में एक मुसलमान कैदी कुरान की एक आयत पढ़ रहा था, वो सुनी तो मालूम हुआ कि इस छोटी सी आयत ने पिछली तमाम पुरानी किताबों को अपने अंदर समो लिया, तो मुझे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से है। हज़रत उमर ने कहा भाई वो कौन सी आयत है जिस एक आयत में पिछली सारी किताबों की तालीमात जमा हो गई? तो उसके बाद उसने ये आयत पढ़ी, वमन युति अल्लाह व रसूलहू व यख्श अल्लाह व यत्तकी। कहा भाई ये कैसे? तो उसने बताया कि यहाँ युति अल्लाह से मुराद है फ़राइज़ की पाबंदी, व रसूलहू से मुराद है सुन्नत नबवी की तामील, यख्शल्ला से मुराद है पिछली ज़िंदगी के गुनाह, गुज़श्ता उम्र के गुनाह, और यत्तकी से मुराद है कि अब आइंदा अगली ज़िंदगी में बुराइयों से बचे। जब इंसान इन चार चीज़ों का आमिल हो जाए तो उलाइक हुमुल फ़ाइज़ून की बिशारत है, खुशखबरी है, क्योंकि फ़ाइज़ उस शख्स को कहते हैं जो जहन्नुम से निजात पाए और उसको जन्नत में ठिकाना मिले। हज़रत उमर फ़ारूक ने ये बात सुनकर आपने फरमाया, ऊती तो जवामेउल कलिम, मैं ऐसे जवामेउल कलिम दिया गया हूँ कि जिसमें थोड़ी बात में बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि हम किसी जगह रुक नहीं सकते, खशियत, तकवा, अतात, ये सब साथ साथ चलेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, आपको कुछ गोलियाँ खाने को मिलती हैं, फिर कुछ आपको सिरप पीने को मिलता है, कोई ट्यूब लगाने की भी मिल जाती है, इसी तरह ये सब कुछ करेंगे तो जन्नत मिलेगी। कोई तहज्जुद पढ़ ले, फ़राइज़ छोड़ देगा? नहीं। कुछ कहते हैं फलां तहज्जुद गुजार है, क्या हुआ अगर हिजाब नहीं पहनते। कोई किसी की बात ही बताता था, मैं लोगों की बातें सुन के भी बहुत सीखती हूँ कि जी आप हमारे हाल हुलिये पे मत जाएं, वैसे मैं नमाज पढ़ती हूँ। तो वो नमाज कौन सी है जो आपको मुंह से बतानी पड़े? इन्ना सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो जब मुंह से बोल के बताना पड़े कि स्टिल आई एम मुस्लिम, तो फिर उसमें फिक्र की जरूरत है। अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं पहले मुफ्लिहून था, अब फायजून। ये ताकीद है, शौक और रगबत पैदा की जा रही है। खशियत भी इबादत है, तकवा भी इबादत है, गुनाहों से रुकना भी इबादत है, भाग भाग के नेकियां करना भी इबादत है। आप देखिए खशियत कैसे पैदा होती है, आगे आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरह फातिर आने वाली है कि इन्नमा यख्शुल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरते हैं उसके इल्म वाले। तो खशियत इल्म की वजह से पैदा होती है, नंबर एक। ताजीम की वजह से पैदा होती है, जब आप किसी को बड़ा समझते हैं तो फिर आप उससे डरते हैं ना। और तकवा जो होता है ना इंसान के अंदर, इबादत से भी आता है। जितनी इबादत आप ज्यादा करते जाएंगे आपको अल्लाह की मौजूदगी का एहसास होगा, क्योंकि इबादत वही करेगा ना जिसको पता है अल्लाह मुझे देख रहा है। लिहाजा ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। किस तरह से एक इंसान इन कामों को करके बैठता है तो इंसान इन सारी चीज़ों को देखे। और सहाबे कराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी को जो दूर से देखता था या आपके करीब नहीं होता था, आपसे हैबत खाता था, बहुत आपका रोब था, लेकिन जो आपके करीब से आता जाता तो वो आपसे मोहब्बत करने लगता। अल्लाह के नबी की ये सुन्नत थी कि आप करीब वालों के साथ बड़े नरम होते थे, क्योंकि ये तकाजा होता है एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी का, यही तकाजा होता है। लेकिन हर ऐरे गैरे के साथ अल्लाह के नबी एक तरह का रवैया नहीं इख्तियार करते थे। और अब देखिए कि यहाँ खौफ की बात है ना, तो खौफ बहुत बड़ा मोटिव है जहन्नुम से इंसान को बचाने वाला। खुदा ना खास्ता यहाँ एकदम छिपकली निकल आए तो फिर हम में से कितने हैं जो कुरान सुनते रहेंगे? खौफ है ना, जहन्नुम का खौफ हमें क्यों नहीं उठाता? यहाँ से तो उठ जाएंगे, बैठे हैं बाहर आवाज़ आ जाए भाई फ्री चीज़ें बट रही हैं बाहर से आके उठा लो, रगबत भी ले जाएगी इंसान को। लेकिन वो कैसे इंसान है कि जिनको ना जन्नत का शौक उठा रहा है और ना जिनको जहन्नुम का खौफ रुला रहा है? ये धोखा है, फिर डरे ही नहीं अभी। सांप जितना भी नहीं समझे जहन्नुम को, वरना सांप का देख के तो कोई इंसान रह नहीं सकता अपनी जगह पे। हो वो क्यामत, वो जहन्नुम उससे बहुत शदीद है जिसको आज हमने सोचा हुआ है। अल्लाह अकबर। इताअत तो अल्लाह और रसूल की, खशियत और तकवा सिर्फ अल्लाह का। ये नोट कीजिएगा, यत्तकेह ही का लफ्ज़ है, वाहिद हुमानी का। नबी की इताअत भी करनी है तो अल्लाह के डर से करनी है, और नाफरमानियों की तरफ भी इशारा है कि नाफरमानियों से डरते हैं। हमारा हाल क्या है कि हम उस्तादों से डरने लगते हैं और अल्लाह का कलाम चल रहा हो तो हमें उसकी फिक्र नहीं होती कि इस वक्त इससे भी देखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद अल्लाह ताला कुछ लोगों की बातें करते हैं कि जो अपनी अमल की कमियों को अपनी बातों से पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना वो बातों का खटिया खाते हैं, हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना, बातें कर कर के खुश कर लेते हैं, परचा लेते हैं। ऐसे लोग हर दौर में होते हैं। कब अक्सम बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, और कस्में खाते हैं अल्लाह की बड़े ज़ोरों शोर से, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तेज़ तर्रार। क्या कस्में? लाइन अमरतहुम, अगर आप हमें हुक्म तो दें, यानी अगर इनको कोई हुक्म दे तो सही नेकी का, लयखरुजुन्ना, तो वो ज़रूर घरों से भी निकल आएंगे। एक दफ़ा इशारा कीजिए, हुक्म दें आप ज़रा, हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं। सुने भाई ये जुमले, एक दिन लोग किसी के साथ ये जुमला बोल रहे होते हैं कि हम तो जी आपके हुक्म के ग़ुलाम हैं, और हो सकता है अगले दिन उसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। क्यों? ये मुँह की बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें करते थे, मुनाफिकों की बात है। जुबान के बड़े मीठे थे, बड़े दावे करते, कस्में खाते, अल्लाह के नबी एक दफ़ा बताएं से हम करें क्या? हम तो घर बार मालो मता सब छोड़ के जिहाद पे जाने को तैयार हैं, हम तो सर पे कफन बांध के जाएंगे, हम तो सारी कश्तियाँ डुबो के जाएंगे, बस एक दफ़ा मौका तो दें। अच्छा जी, अल्लाह अपने नबी को पहले ही बता रहे हैं इनकी इन बातों से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाना, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। का कुल ला तुकसिमो, मत कस्में खाओ, क्योंकि ता तुम मारूफतुन, तुम्हारी फरमा बरदारियाँ हमें खूब पता है, हम खूब अच्छी तरह उखद के मैदान में देख चुके हैं। एन लड़ाई से पहले 300 लोगों को लेके चले गए थे, खूब पता है बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, करके दिखाना मुश्किल होता है। इन अल्लाह खबीर हम बिमा तामलून, यकीनन अल्लाह को खूब पता है जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे दिलों में बातें हैं इसका अल्लाह को खूब अच्छी तरह पता है। बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय छोटे छोटे काम ही बंदा करने लग जाए ना, तो एक वक्त आएगा कि वो छोटे छोटे काम मिलके एक बड़ा काम हो जाएगा। और यहाँ जहदा सख्ती से जुहद मेहनत को कहते हैं, जिहाद लफ्ज़ भी इसी से है, यानी मुज्तहदीन फी ईमानिहिम, ये मुराद है। वुसत भर कस्में खाते थे, यानी कसम भी खाते थे इतनी जितनी वो खा सकें, ये मुराद है। बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये करके दिखाएंगे, हमें हुक्म दे के देखें, हम तो इशारे के गुलाम हैं जी। अच्छा सर कल से आना शुरू कर दें, नहीं कल तो फिर मेरा अपॉइंटमेंट है, कल तो हम नहीं ये कर सकते, ये तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह ना हो जाए, उस तरह ना हो जाए, अल्लाह ताला कहते हैं कुल अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल, इनसे कह दो कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, बातें ना करो, काम करके दिखाओ। हाँ फ़इन तवल्लव, फिर अगर तुम मुंह फेर लो, फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो जान लो कि रसूल के जिम्मे तो बस इतना ही है जो उस पर उठवाया गया। लिखिए क्या है ये, मा हुम्मिला वमा अलैना इल्लल बलाग, तबलीग, यानी नबी के जिम्मे कोई तुम्हारी बातें नहीं है, बल्कि नबी के जिम्मे ये कि इस पैगाम को तुम तक पहुंचा दिया जाए। और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े आसान तरीके से करते आ रहे हैं। और वालेकुम अहम्मिलतुम, और तुम पर लाजिम किया गया जो तुम्हारे जिम्मे। आप लोग बताएं एक लफ्ज में सिर्फ कि यहाँ मा हम्मिलतुम क्या है, इताअत। लिख लें इस जुमले के नीचे, नबी का काम बात पहुंचाना, उम्मतियों का काम बात को मानना, ये है नबी और उम्मत का ताल्लुक। वइन तुतीउहु, और अगर तुमने इताअत की उसकी, किसकी हु, किसकी, नबी की, उनके तौर तरीके, उनका काम, उनकी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी उन जैसी बन गई, तो फिर याद रखना क्या, वमाल रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूल के जिम्मे तो बस बलागुल मुबीन है, हक बात को पहुंचा देना, खोल के देना। नबी से मोहब्बत का पता चला, आशिकाने रसूल के जिम्मे जो जिम्मेदारी है वो क्या है, मा हुम्मिल तुम, इताअत करो, करके दिखाओ, फिर मानेंगे, बातें ना करो, काम करके दिखाओ। और इस आयत में आपको जवाब मिल गया कि हिदायत किसको मिलती है, किसको पता चलता है क्या ठीक है क्या गलत, जो तुती ऊहू इताअत करेगा। देखिए हम सब कुरान सुनते और सुनाते हैं, इसको मानने की तौफीक किसको होगी, जिसकी अमली जिंदगी में इताते रसूल होगी। हमेशा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं दीन को पढ़ने सीखने सुनने के बाद भी, 5 5 10 10 साल कुरान से और हदीस से ताल्लुक के बाद भी लोग डबल माइंडेड रहते हैं, वजह क्या, तो तीयूह वाली कैफियत नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको ये कुरान बिल्कुल सही समझ आए, यानी मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ ना, मैं तो बीच में एक तार हूँ छोटा सा, आप कुरान को हकीकत में वैसे ही समझ लें जो वो है, मेरे वास्ते वसीले के बगैर, चाहते हैं तो अल्लाह के नबी की इताअत करनी शुरू कर दें, शौरी इताअत, देखिएगा फिर अल्लाह आपका दिल कैसे खोलेगा। वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बा, अल्लाह तआला कहते हैं वमन यत्तकिल्लाह यजल्लहू फुरकाना, सूरह अनफाल में हम पढ़ चुके हैं कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए ज़रूर फुरकान पैदा करता है। हक क्या है उसका दिल बताता है, बातिल क्या उसका दिल बताता है, सारे अमीर ताबू वाली कैफियतें ख़त्म। एक हदीस में भी इसका खुलासा है कि फला पा गया वो शख्स जिसका दिल हक बात का मुहाफिज बना दिया गया, उसको पता चल गया कि अल्लाह को क्या पसंद है। कितने साल के हम हो गए, मेरा ख्याल 20 से तो सारे ऊपर होंगे ना, या उसके करीब होंगे, 25 30, चले 30 के भी हो गए, अभी तक नहीं पता चला अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। देखिए बात अच्छी नहीं है लेकिन समझाने के लिए कह रही हूँ कि बीवी शौहर साथ रहते हैं ना, शुरू में बड़ी गलतियाँ लगती हैं, बड़े रोती रहती हैं लड़कियाँ, सोचा कुछ था मर्द का मिजाज कुछ और निकला, 5 साल के बाद कुछ सेटिंग हो जाती है, 6 साल के बाद दिन ब दिन हो जाती है, किसी की ना हो तो फिर वो ना समझी की बात है, मिजाज शनास हो जाता है। और होना चाहिए बीवियों को, वैसे तो कोई नहीं भी होती, वो ही बात करती हैं शादी के 20 साल बाद भी जो पहले दिन मियाँ को गुस्सा दिलाने का सबब बनी थी, क्योंकि वो पत्थर नहीं अपनी जगह से हिलते, ईंट रोड़े जो होते हैं ना वो नहीं हिलते, वो जब भी उसे ठोकर लगेगी फिर वो तकलीफ ही दे के जाएगा बंदा, रोड़े की तरह अटके ही रहते हैं कुछ लोग दूसरों के लिए, लेकिन समझदार लोग समझ जाते हैं। आप किसी इंसान के साथ रहते हैं 1 2 साल के अंदर, आपको खूब अच्छा बताओ, आपको पता चल जाता है कि अभी इसके बाद क्या करेगा क्या कहेगा, तो क्या अभी तक अल्लाह की मर्ज़ी नहीं समझ आई? कैसे मुसलमान है, अल्लाह के नबी की चॉइस नहीं पता चली? दूसरों से पूछेंगे, मौलवी से पूछेंगे, दर्स वालों से पूछेंगे, उस्ताद से पूछेंगे, बताएं कि क्या ठीक है क्या गलत, अपने दिलों से पूछो। तुम्हें पता है कि अल्लाह ने तुम पे क्या बोझ डाला है? वो इताअत का है। मानने वाले तो बनो, और जिसने नहीं मानना सर फोड़ दें, वो नहीं मानेगा। आप अपने बच्चों को 10 दफ़ा ये जुमले बोलते होंगे ज़िंदगी में कि इसने नहीं मानना छोड़ दो, इसके आगे क्या सर फोड़ूं। इस तरह कुछ उम्मती भी स्टबन होते हैं, ढीठ हुए होते हैं, कहते हैं नहीं मानेंगे हम, कर लो जो करना है। मानोगे तो अहदा दो, सारी हिदायतें मिल जाएंगी उम्मत मुस्लिमा को, इनके लिए रास्ते खोलेंगे, इनको पता चलेगा ज़मीन के इस टुकड़े के नीचे तेल है, खोदो और निकाल लो। इनको बाहर से दूसरे गैरों की टीमें नहीं बुलवानी पड़ेंगी जो तेल तो ढूंढ लेते हैं लेकिन आपको नहीं फिर देते। फिर अल्लाह दिखाएगा उम्मत मुस्लिमा तुम्हारी फलां ज़मीन में पहाड़ों के नीचे सोना जका हुआ, जाओ निकाल लो और खाओ पियो, तहतदू। फिर देखिए ज़मीन सोना उगलेगी, आसमान से बारिशें बरसेंगी। एक दफ़ा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पे आए हम, फिर देखें अल्लाह के वादे सच्चे होते हैं।